नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से उत्पत्ति नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। आशा करते हैं कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं ये मधुर संगीत रचना।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र व मधुर नाम में आप सबको नमस्कार। मुझे आशा है कि आप सब प्रतिदिन की तरह आज भी परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए तैयार हैं। जैसे कि आप सबको मालूम है कि इन दिनों हम उत्पत्ति की पुस्तक में याकूब और यूसुफ के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा कि याकूब अपने पूरे परिवार के साथ मिस्र देश में रहने के लिए आया। आज हम अध्याय 47 से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे और हमने देखा कि किस प्रकार याकूब और उसका पूरा परिवार मिस्र देश में आया। यूसुफ अपनी रणनीति के अंतर्गत उन्हें गोशेन देश में रहने के लिए लाता है, और वास्तव में यह भूमि उस समय या उन दिनों में बहुत ही उपजाऊ भूमि थी, परंतु इस समय वे अकाल के बीच में फंसे हैं। इसी कारण से किसी भी भूमि के स्वामियों के लिए उनकी जमीन उतनी अहमियत या मूल्य नहीं रख रही थी। मित्रों, अब हम देखेंगे कि याकूब के अभी तक के जीवन का यह सबसे महत्वपूर्ण और अच्छा अध्याय है। जब हम पहले वचन में याकूब से मिले, तब वह अच्छी तरह पेश नहीं हुआ, जैसे कि हम शास्त्र में देखते या पाते हैं। यहां तक कि वह जब तक अपनी यात्रा मिस्र के लिए नहीं कर लेता, हम उसे विश्वास पर चलने वाले व्यक्ति के रूप में भी नहीं देख पाते हैं। यह अध्याय अन्य अध्यायों से अधिक याकूब के बारे में हमें बताता है। जैसे जैसे अकाल के खत्म होने का समय आता है, यह बहुत ही तीव्र हो जाता है। यद्यपि इस अकाल के चपेट में संसार के बहुत से लोग शामिल हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कनान और मिस्र देश का नाम लिया गया है, क्योंकि ये उस कहानी को आगे बढ़ाने में सहयोगी रहे हैं जिसे हमें यहाँ पर बताया गया है। आगे हम देखते हैं कि यूसुफ अपने पिता और भाइयों को फिरौन के सामने लाता है। तो आइए हम उत्पत्ति 47 अध्याय और उसके एक पद को पढ़ें, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब यूसुफ ने फिरौन के पास जाकर समाचार दिया, मेरा पिता और मेरे भाई और उनकी भेड़ बकरियां और गाय बैल और जो कुछ उनका है सब कनान देश से आ गया है, और देख वे गोशेन देश में हैं। यूसुफ अपने पिता और भाइयों को मिस्र के राजा फिरौन के सामने लाने जा रहे हैं। इससे पहले कि वह उनके लिए स्थान मांगे, उसने उन्हें पहले से ही गोशेन में ठहरा दिया। आप इसमें यूसुफ की रणनीति देख सकते हैं, क्योंकि यदि वे पहले से वहां पर हैं तो फिरौन को वह स्थान देने में सुयोग्य होगा। वैसे भी वे वहां जाकर पहले से उन्होंने अपने सामानों को भी खोल दिया था, इसलिए उन्हें दूसरी तरफ भेजने का सवाल ही नहीं उठता है। हम उत्पत्ति 47 अध्याय उसके 2 और 3 पद में पढ़ते हैं, फिर उसने अपने भाइयों में से 5 को लिया और फिरौन के सामने खड़ा कर दिया। तब फिरौन ने उसके भाइयों से पूछा, तुम्हारा धंधा क्या है? उन्होंने फिरौन से कहा, हम तेरे दास चरवाहे हैं, जैसे कि हमारे बाप दादे भी थे। मित्रों, हमने देखा कि चरवाहे और पशुओं की देखभाल करने वाले लोगों के साथ अन्य लोग कोई संपर्क रखना या उनके साथ रहना पसंद नहीं करते थे। मिस्री लोग चरवाहों की तरफ कोई ध्यान नहीं देते थे और न ही भेड़ों को चराने व उनकी देखभाल में ध्यान देते थे। इसलिए इसराइल के पुत्रों के पास एक मौका था कि वे उस काम को करें जिसे मिस्री लोग करना नहीं चाहते हैं। अब हम उत्पत्ति 47 अध्याय उसके 4 से 6 पद में पढ़ते हैं, फिर उन्होंने फिरौन से कहा, हम इस देश में परदेशियों की भांति रहने के लिए आए हैं, क्योंकि कनान देश में भारी अकाल पड़ने के कारण तेरे दासों की भेड़ बकरियों के लिए कोई चारागाह नहीं रहा, इसलिए कृपा करके अपने दासों को गोशेन में रहने की आज्ञा दे। तब फिरौन ने यूसुफ से कहा, तेरा पिता और तेरे भाई तेरे पास आए हैं, मिस्र देश तेरे सामने पड़ा है, अपने पिता और अपने भाइयों को इस देश के अच्छे से अच्छे भाग में बसा दे, वे गोशेन देश में ही रहें, और यदि तू उनमें से योग्य पुरुषों को जानता हो तो उन्हें मेरे पशुओं की रखवाली के लिए नियुक्त कर दे। मित्रों, मिस्रों के लिए चरवाही करना उतना प्रचलन नहीं था, इसलिए फिरौन को अपने पशुओं की देखभाल के लिए किसी और की आवश्यकता थी। अब यूसुफ अपने पिता को फिरौन के सामने लाता है, और यह वास्तव में बहुत ही स्मरणीय बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि याकूब अब अपने उत्तम स्थान में खड़ा है। उसके बारे में हमने जो कुछ भी अब तक अध्ययन किया था, यह स्थिति उनमें से उत्तम है। हम उत्पत्ति 47 अध्याय उसके 7 पद में पढ़ते हैं, तब यूसुफ ने अपने पिता याकूब को लाकर फिरौन के सामने खड़ा किया, और याकूब ने फिरौन को आशीर्वाद दिया। मित्रों, यहां पर आप ध्यान दीजिए कि याकूब फिरौन को आशीर्वाद दे रहा है। वह अपने नाम के मुताबिक जीना आरंभ कर रहा है। अब वह परमेश्वर के लिए एक गवाही है। हम देखते हैं कि छोटा हमेशा बड़ों की आशीष प्राप्त करता है, और याकूब फिरौन को आशीर्वाद देता है जो परमेश्वर के लिए एक गवाही है। हम उत्पत्ति 47 अध्याय उसके 8 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, तब फिरौन ने याकूब से पूछा, तेरी आयु कितनी है? इस समय यदि याकूब अपने पुराने स्वभाव में जीता होता जैसे वह जी रहा था तो उसने इस तरह से कहा होता, राजा साहब अच्छा प्रश्न है, वैसे मैं 130 साल का हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने अपने जीवन काल में क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा भाई कितना चालाक था जब मैं छोटा ही था और कैसे मैं इतना धनी बन गया अपने ससुर के साथ चालाकी करके। उसने अपने परिवार के बारे में डींग मारी होती कि मेरे 12 पुत्र हैं, इस प्रकार से वह कहता और आगे बढ़ता ही रहता। परंतु अब याकूब बदला हुआ व्यक्ति है, अब उसकी सुनिए कि वो क्या कहता है। उत्पत्ति 47 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, इस पर याकूब ने फिरौन से कहा, मैं तो 130 वर्ष परदेशी होकर बिता चुका हूं और वे थोड़े और बुरे रहे हैं। अभी तो मैंने उतने दिन नहीं देखे जितने मेरे बाप दादों ने परदेशी होकर बिताए। मित्रों, सबसे पहले इस बात पर ध्यान रखिए कि वह 130 वर्ष की आयु में मिस्र देश में आया है और 147 वर्ष की अवस्था में वह मर जाता है। इस प्रकार से वह मिस्र की भूमि में कुल 17 साल बिताता है। और मैं ऐसा सोचता हूं कि जब वह मिस्र देश में आया तो उसका एक पैर पहले से ही कब्र में लटक रहा था, अर्थात वह मरने की कागार में ही था। परंतु यूसुफ को जीवित पाने के आनंद ने उसकी आयु को बढ़ा दिया और वह 17 साल तक और जीवित रहा। पुनः यहां पर इन लोगों के लिए फिरौन के साथ एक बूढ़े व्यक्ति को घमंड करने का मौका मिला है। परंतु यहां पर आप देखें कि याकूब कितना बदला हुआ व्यक्ति है। वह कहता है कि उसकी आयु 130 वर्ष की है और घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं है और वे दिन थोड़े और बुरे रहे हैं। वह अपने पिता की चालाकी को अपनाने के बारे में घमंड या डींग मार रहा था। परंतु इसके बदले में वह कहता है कि वह अपने बाप दादों के बराबर नहीं चला है। अभी तो मैंने उतने दिन नहीं देखे जितने मेरे बाप दादों ने परदेशी होकर बिताए। क्या यह बदला हुआ व्यक्ति नहीं है? वह पुराने याकूब की तरह लगता ही नहीं है, है कि नहीं? वह अपने जीवन के लिए परमेश्वर को महिमा दे रहा है और वह कोई घमंड भी नहीं कर रहा है कि उसने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है। तब हम उत्पत्ति 47 अध्याय उसके 10 पद में पढ़ते हैं, फिर याकूब फिरौन को आशीर्वाद देकर उसके सामने से चला गया। मित्रों, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि याकूब अब उस स्थान पर पहुंच गया है क्योंकि उसे यहां पर एक सुनहरा मौका मिला कि वह घमंड करे, लेकिन उसने मौके का फायदा नहीं उठाया। किसी और ने सोचा होगा, फिरौन एक महान शासक है, परंतु मैं चाहता हूं कि वह यह जाने कि मैं भी कनान देश में एक बड़ा व्यक्ति था। परंतु याकूब ने ऐसा कोई भी घमंड दिखाने का काम नहीं किया। वह एकमात्र पापी है जो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा बचाया गया है। मित्रों, हमारे दिनों में हम लोग बहुत से मसीहियों को सुनते हैं जो घमंड करते हैं। कभी कभी हम अपने आसपास के लोगों में से भी किसी निश्चित व्यक्ति की बढ़ाई करने लगते हैं कि उसने क्या क्या काम किया है। हम उनकी महानता के बारे में बातें करते हैं कि वे कितने महान हैं। जो भी हो, यदि हम सबको सत्य बताए जाए तो हम कहेंगे कि हम सिर्फ पापियों का एक झुंड हैं और हमारे पास घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि हमारा एक अद्भुत उद्धार करता है जो हमारे प्रति कई वर्षों से अनुग्रहकारी और धैर्यवान है। वही सब कुछ है, इसलिए हम में से कोई भी उसके बारे में घमंड कर सकता है। मित्रों, ना ही हम यह कह सकते हैं कि हम अपने पिता से बड़े या योग्य हैं। मेरे एक मित्र ने मुझे एक बार बताया कि वह अपने पिता के कारण बहुत शर्मिंदा था। उसके पिता एक प्रचारक थे और वे उसी महाविद्यालय में संदेश देने के लिए आ रहे थे। जब उसे पता चला कि उसके पिता महाविद्यालय में प्रचार करने के लिए आ रहे हैं तो वह बहुत शर्मिंदगी महसूस करने लगा। वह नहीं चाहता था कि लोग उसे जाने कि यह प्रचारक का बेटा है, इसलिए वह बीमार का बहाना करके उस सभा में शामिल होने से बच गया। वह उस महाविद्यालय में 4 वर्ष तक रहा और तब वह कुछ वर्षों के लिए व्यापार करने लगा। उसने कहा कि मैं बहुत कठिनाई से होकर गुजरा, तब मैंने अपने पिता के बारे में उस गलत सोच को बदल डाला। मैंने सोचा कि मेरा बाप मूर्ख है, लेकिन मैंने बाद में इस बात को मान लिया कि उसके पिता ने परिवार को संभाला है और वह एक बेहतरीन बाइबल शिक्षक भी हैं। कुछ समय के लिए व्यापार के कठिन अनुभव के बाद वो घर आया और देखा कि मेरे पिता किस प्रकार से प्रगति कर रहे थे। जितना मेरे पिता ने सीखा उतना कोई भी नहीं सीख सकता। मेरे घर से बाहर गए हुए समय में ही उन्होंने बहुत कुछ सीखा। अंत में मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मेरा पिता बहुत ही बुद्धिमान और सक्रिय है, जितना मैं सोचता था उससे भी कहीं अधिक। क्या इसी प्रकार की कहानी हम में से कई लोगों के साथ सत्य नहीं है? परंतु याकूब के लिए यह बिल्कुल सच नहीं है। वह एक नम्र स्थान को लेता है क्योंकि वह अब एक बदला हुआ व्यक्ति है। मित्रों, हम उत्पत्ति 47 अध्याय उसके 11 पद में पढ़ते हैं, तब यूसुफ ने फिरौन की आज्ञा के अनुसार मिस्र देश के अच्छे से अच्छे भाग में अर्थात रामसेस के देश में अपने पिता और भाइयों को भूमि का भाग सौंप कर बसा दिया। यहां पर रामसेस का देश गोशेन देश ही है। तब हम उत्पत्ति 47 उसके 12 और 13 पद में आगे पढ़ते हैं, और यूसुफ ने अपने पिता और अपने भाइयों और अपने पिता के सारे घराने के लिए उनके बाल बच्चों की गिनती के अनुसार भोजन सामग्री आदि की व्यवस्था की, और उस देश में भोजन वस्तु न रही क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था, जिससे मिस्र और कनान दोनों देश अत्यंत पीड़ित हो गए थे। मित्रों, यहां पर केवल मिस्र और कनान देश का नाम आया है। इसका कारण यह है कि इन दोनों ही देशों का भौगोलिक क्षेत्र हमारी कहानी में शामिल है। यदि याकूब अपने परिवार के साथ कनान में ही रहता तो शायद वे नाश हो गए होते। खाद्य सामग्री या अनाज मिस्र देश में इकट्ठा किए गए हैं, परंतु इस समय कोई भी अनाज की उपज नहीं हो रही है। निश्चित तौर पर अकाल पूरे अफ्रीका में फैल चुका था क्योंकि नील नदी बाढ़ के पानी से नहीं भर रही थी, जो मिस्र की खेती के लिए बहुत ही अनिवार्य था। हम उत्पत्ति 47 अध्याय के 14 पद में पढ़ते हैं, उस अन्न के बदले जो लोग मोल लेते थे, यूसुफ ने मिस्र और कनान देश का सब रुपया इकट्ठा किया। फिर यूसुफ ने उस रुपए को फिरौन के भवन में पहुंचा दिया। मित्रों, अब हम कुछ ऐसी बातों की ओर पहुंच रहे हैं जहां पर यूसुफ का विरोध होता है। लोग कहते हैं कि उसने गरीबी का लाभ उठाया और जमीन खरीद ली। दूसरे शब्दों में कहें तो उसने गिरवी रखना बंद किया और जमीन खरीद ली। मैं सोचता हूं कि इस प्रकार की आलोचना यूसुफ के प्रति उचित नहीं है। हम इस तरह आरंभ करते हैं कि वह तो फिरौन का एक प्रतिनिधि है, कोई भी जमीन उसकी अपनी नहीं है, वह कोई भी कार्य अपने लिए नहीं कर रहा है, वह किसी भी रीति से अपने कहे गए शब्दों के लिए इतना दुष्ट नहीं था। अकाल के कारण उसने कोई व्यक्तिगत आमदनी या कमाई भी नहीं की। मित्रों, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक बार किसी देश में युद्ध छिड़ा और उनके पास यूरेनियम की कमी थी, और उस समय यूरेनियम की काफी मांग भी थी। जब कुछ लोगों को पता चला कि उनके जमीनों में यूरेनियम है तो उन्हें उस भूमि के लिए अच्छी कीमत मिली। अब प्रश्न यह है कि क्या वे अपनी सरकार से फायदा या लाभ उठा रहे थे? मैं नहीं सोचता कि वे ऐसा कर रहे थे। उस समय पूर्ति का नियम उनकी और जो आवश्यकता थी उसकी कानून व्यवस्था कार्य कर रही थी। मैं सोचता हूं कि वही सिद्धांत यहां मिस्र देश में भी लागू होता है। यूसुफ ने जमीन फिरौन के लिए खरीदी और वह लोगों को जीवित रखने के लिए उन्हें भोजन वस्तु उपलब्ध करा रहा था। मैं सोचता हूं कि यूसुफ नियम और कानून की व्यवस्था के अंतर्गत ही काम कर रहा था, अर्थात वह कानून में भी सीमित था। हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 47 अध्याय और उसके 15 से 20 पदों में पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब मिस्र और कनान देश का सब धन समाप्त हो गया, तब सब मिस्रियों ने यूसुफ के पास आकर कहा, हमें भोजन दे, हमारा धन तो समाप्त हो गया है, अब हम तेरे रहते क्यों मर जाएं? तब यूसुफ ने कहा, यदि तुम्हारा सब धन समाप्त हो चुका है तो अपने पशु दे दो और मैं तुम्हें तुम्हारे पशुओं के बदले भोजन दूंगा। तब वे यूसुफ के पास अपने पशु ले आए और यूसुफ ने उन्हें घोड़ों, भेड़, बकरियों, गाय बैलों और गधों के बदले भोजन दिया, और उसने उस वर्ष उनके समस्त पशुओं के बदले उन्हें भोजन दे देकर उनका पोषण किया। और जब वह वर्ष बीत गया तो अगले वर्ष उन्होंने फिर आकर उससे कहा, हम अपने प्रभु से कुछ छिपा ना रखेंगे कि हमारा सब धन तो समाप्त हो गया है और हमारे सब पशु भी हमारे स्वामी के हो गए हैं, अब हमारे स्वामी के लिए हमारे शरीर और भूमि के सिवा कुछ न रहा। हम और हमारी भूमि तेरी आंखों के सामने क्यों नाश हो जाएं? हमें और हमारी भूमि को भोजन के बदले मोल ले ले, फिर हम अपनी भूमि सहित फिरौन के दास हो जाएंगे। हमको बीज दे कि हम जीवित रहें और मर न जाएं। और भूमि उजड़ न जाए। अतः यूसुफ ने मिस्र की सारी भूमि फिरौन के लिए मोल ले ली, क्योंकि उस भयंकर अकाल के कारण हर एक मिस्री को अपना अपना खेत बेचना पड़ा। इस प्रकार वह भूमि फिरौन की हो गई। मित्रों, इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि अकाल बहुत ही भयंकर था। हम उत्पत्ति 47 अध्याय उसके 21 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर उसने प्रजा को जो सारे मिस्र देश में एक छोर से दूसरे छोर तक रहती थी नगर में लाकर बसा दिया। एक बड़ा स्थानांतरण शहरी क्षेत्र में हुआ ताकि वे भोजन पदार्थ वितरण केंद्र के निकट में रहें, जहां पर अनाज का भंडार था। आपको याद होगा कि यूसुफ ने आरंभ ही में इन केंद्रों को चुन लिया था जो मिस्र के मुख्य केंद्र थे। अब वह लोगों को उस केंद्र के निकट लाता है ताकि उन्हें अनाज वितरण किया जा सके। हम उत्पत्ति 47 अध्याय उसके 23 और 24 पद में इस प्रकार से पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, तब यूसुफ ने प्रजा से कहा, सुनो, मैंने आज तुमको और तुम्हारी भूमि को भी फिरौन के लिए मोल लिया है। देखो, यहां तुम्हारे लिए बीज है और तुम खेत बो सकते हो, और फसल के समय पांचवा भाग तुम फिरौन को दोगे, शेष चार भाग तुम्हारे होंगे। खेतों में बीज बोने तथा तुम्हारे और तुम्हारे घराने के लिए और बाल बच्चों के भोजन के लिए। मित्रों, यूसुफ इस बात को जानता था कि अगले वर्ष अकाल खत्म हो जाएगा, इसलिए वह लोगों को बीज बोने के लिए कहता है। हम उत्पत्ति 47 अध्याय उसके 25 से 26 पद में पढ़ते हैं, अतः उन्होंने कहा, तूने हमें बचा लिया है, हमारे प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि हम पर हो और हम फिरौन के दास बने रहेंगे। और यूसुफ ने मिस्र की भूमि के विषय में ऐसा नियम ठहराया जो आज तक है कि पांचवां भाग फिरौन को मिला करेगा, केवल याजक की भूमि फिरौन की नहीं हुई। यूसुफ अपने पिता से वायदा करता है कि वह याकूब को कनान में दफनाएगा, जिसे हम उत्पत्ति 47 अध्याय उसके 27 से 31 पदों में पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसके बाद इसराइली मिस्र के गोशेन में रहने लगे और वहां उन्होंने बहुत सी संपत्ति प्राप्त कर ली और वे फूल फलकर बहुत बढ़ गए, और याकूब मिस्र देश में 17 वर्ष जीवित रहा। इस प्रकार याकूब की आयु 147 वर्ष की हुई। जब इसराइल के मरने का दिन निकट आया, तब उसने अपने पुत्र यूसुफ को बुलाकर कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख और मेरे साथ कृपा और सच्चाई का व्यवहार कर, मुझे मिस्र में मिट्टी ना देना, परंतु जब मैं अपने बाप दादों के साथ सो जाऊंगा तब तू मुझे मिस्र से उठाकर ले जाना और उन्हीं के कब्रिस्तान में मिट्टी देना। तब उसने कहा, मैं तेरे वचन के अनुसार करूंगा। फिर उसने कहा, मुझसे शपथ खा। अतः उसने उससे शपथ खाई। तब इसराइल ने खाट के सिरहाने की ओर आराधना में सिर झुकाया। मित्रों, मैं सोचता हूं कि याकूब के निवेदन के अंदर में बहुत सी सत्यता छिपी हुई थी कि उसे कनान देश में ही दफनाया जाए। सबसे पहली बात, वह 147 वर्ष का हो चुका है और उसे यह मालूम हो गया है कि अब वह मरने के करीब है और वह मिस्र में ही मरेगा। मैं सोचता हूं कि अब सब कुछ उसके लिए स्पष्ट हो गया था। यूसुफ फिरौन के लिए मिस्र की सभी भूमि इकट्ठा कर रहा था, जो उसे यह विश्वास दिला रहा था कि उसका पूरा परिवार मिस्र देश में आराम से रह सकेगा और कभी भी कनान देश वापस जाना नहीं चाहेगा। उसकी उम्र उसे निश्चित रूप से कह रही थी कि वह थोड़े दिनों के बाद मर जाएगा। मित्रों, हमें इस निवेदन को याकूब के विश्वास के प्रमाण के रूप में पहचानने की आवश्यकता है। वाचा जो उसके पिता के साथ बांधी गई थी, हमें इसे लिख लेना चाहिए, क्योंकि यह बाइबल में कई बार आगे हमें मिलेगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। पुराने नियम की आशा मात्र सांसारिक आशा थी। इब्राहिम ने विश्वास किया कि उसे कनान में मृतकों में से जिलाया जाएगा, इसलिए वह चाहता था कि उसे उसी भूमि में दफनाया जाए। इसहाक ने भी यही विश्वास किया और अब याकूब भी उसी विश्वास को प्रकट कर रहा है। आप देखेंगे कि पुराने नियम की आशा यीशु मसीह के साथ हवा में उठा लिए जाने की नहीं थी और न ही एक नए यरूशलेम में प्रवेश करने की थी, जो कलीसिया के लिए अनंतकालीन रहने का स्थान है। पुराने नियम की आशा यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर राज्य स्थापित करने में थी, जो वह करने पर था। जब ऐसा होगा तब इसराइलियों की सबसे बड़ी आशा पूर्ण होगी और ये लोग उस राज्य के लिए जीवित किए जाएंगे। पहले 1000 वर्ष परीक्षा के समय होंगे, उसके बाद अनंत काल का राज्य आरंभ होगा और कभी खत्म ना होगा। इसी कारण याकूब नहीं चाहता था कि उसे मिस्र में ही दफनाया जाए। यदि उसका विश्वास और आशा परमेश्वर के वायदे पर नहीं होता तो उसे कहीं भी दफनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज विश्वासियों के लिए यह कोई मायने नहीं रखता है कि हम कहां पर दफनाए गए। हम जहां कहीं भी क्यों ना दफनाए गए हों, ऊपर उठा लिए जाने के समय हम सब जी उठेंगे और हमारे शरीर आत्मा से जुड़ जाएंगे। वह तब होगा जब हमारी मृत्यु ऊपर उठा लिए जाने के पहले हुई है। तब यदि हम उस समय जीवित हैं तो हम परिवर्तित हो जाएंगे और हवा में प्रभु यीशु से मिलने के लिए उठा लिए जाएंगे। इसलिए यह कोई मायने नहीं रखता है कि हम कहां दफनाए गए हैं, चाहे मिस्र में या कनान में या भारत में या किसी अन्य देशों में। जो मसीह में जीवित हैं और मसीह में मर चुके हैं वे सभी जगहों में से उठा लिए जाएंगे। यह कोई भी अंतर पैदा नहीं करेगा कि हम कहां हैं। हमें हवाई अड्डे में जाने की आवश्यकता नहीं है कि हम वहां से उठा लिए जाएं। हमारी आशा स्वर्गीय आशा है। पुराने नियम की आशा इस धरती की आशा है और याकूब उस भूमि में दफनाना चाहता है जहां से पुनरुत्थान हो, और यही उसका विश्वास है। वह आशा करता है कि प्रतिज्ञा के देश में मृतक फिर से जी उठेंगे। याकूब अब एक विश्वासी व्यक्ति बन चुका है और बन रहा है। मित्रों, यहां पर अध्याय 47 समाप्त होता है और इसके साथ ही हमारा समय भी समाप्त हो गया है। इसलिए हम अगले अध्ययन में एक नए अध्याय के साथ और नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।